एकत्रा ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम दर्शन की थोड़ी गहराइयों में उतर रहे हैं। एक ऐसी किताब पर बात करेंगे जिसने सही और गलत के बारे में हमारी सोच को कह सकते हैं कि हिलाकर रख दिया। मैं हूं आपकी पहली गाइड इस सफर पर।
और मैं हूं आपका दूसरा साथी। आज हम बात कर रहे हैं महान दार्शनिक इमैनुअल कांट की एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण किताब क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। नाम सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर यकीन मानिए इसके जो विचार हैं वो आज भी उतने ही मायने रखते हैं।
हाँ बिल्कुल, आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें रोज नई नैतिक दुविधाएं सामने आती हैं। क्या सही है, क्या गलत है, किसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, ऐसे में कांट के विचार शायद एक दिशा दे सकते हैं। सही कहा है। और सवाल यह है कि क्या नैतिकता का कोई ऐसा आधार हो सकता है जो सिर्फ हमारी भावनाओं या कह लीजिए हालातों पर निर्भर ना हो बल्कि तर्क पर टिका हो।
हाँ, यही समझने की कोशिश करेंगे आज, मतलब एक यूनिवर्सल, एक सार्वभौमिक आधार खोजने की कोशिश।
तो चलिए पहले उस शख्स से मिलते हैं जिन्होंने ये गहरे विचार दुनिया को दिए, इमैनुअल कांट। 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक थे वो, 1724 से 1804 तक।
प्रशिया के कॉनिग्सबर्ग शहर में रहते थे, जो अब रूस का हिस्सा है। और हाँ, उन्हें मॉडर्न फिलॉसफी के सबसे प्रभावशाली सेंट्रल फिगर्स में गिना जाता है।
कहते हैं कांट ने दर्शन में एक तरह की क्रांति ला दी थी। जैसे कॉपरनिकस ने कहा था ना कि पृथ्वी नहीं सूरज केंद्र है।
हाँ, कॉपरनिकन रेवोल्यूशन।
बिल्कुल, वैसे ही कांट ने कहा कि ज्ञान का केंद्र बाहरी दुनिया नहीं बल्कि हमारा मन है। मतलब हम दुनिया को कैसे समझते हैं यह हमारे मन की बनावट पर निर्भर करता है।
बहुत सिस्टमैटिक सोच थी उनकी। उनकी तीन मशहूर क्रिटिक्स हैं, जिनमें से ये दूसरी है। और उनकी एक खास बात ये भी थी मेरे ख्याल से कि उन्होंने उस समय के कई विचारकों को चुनौती दी।
हाँ बिल्कुल, खासकर अनुभववादियों को जैसे डेविड ह्यूम, जो मानते थे कि नैतिकता बस हमारी भावनाओं या नतीजों पर आधारित होती है, अच्छा बुरा हमारी पसंद नापसंद से तय होता है ऐसा।
लेकिन कांट ने कहा नहीं।
नहीं, कांट ने कहा कि नैतिकता का आधार हमारी भावनाएं नहीं बल्कि शुद्ध तर्क, प्योर रीजन होना चाहिए। अपनी पहली बड़ी किताब में उन्होंने ज्ञान की सीमाएं बताई थी, है ना?
हाँ, क्रिटिक प्योर रीजन में।
हाँ, लेकिन इस दूसरी किताब में क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में उन्होंने दिखाया कि नैतिकता के लिए हमारा प्रैक्टिकल रीजन मतलब व्यवहारिक तर्क हमें कुछ चीजों को मानने पर मजबूर करता है, ऐसी चीजें जिन्हें हम वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं कर सकते।
जैसे कि
ईश्वर, स्वतंत्रता,
ये सब।
हाँ, ईश्वर, स्वतंत्रता, अमरता, ये तर्क और आस्था के बीच एक पुल जैसा बनाते हैं।
अच्छा, तो अब सीधे किताब पे आते हैं। इसका मुख्य मकसद क्या है, मतलब कांट क्या साबित करना चाह रहे थे इस किताब से?
देखिए, इस किताब का जो मूल उद्देश्य है वो ये दिखाना है कि नैतिकता का एक पक्का, एक यूनिवर्सल आधार है, ऐसा आधार जो हमारी भावनाओं, इच्छाओं, संस्कृति या यहाँ तक कि किसी डिवाइन कमांड, ईश्वर के आदेशों पर भी निर्भर नहीं करता।
तो फिर किस पर निर्भर करता है
ये आधार? सिर्फ और सिर्फ हमारे तर्क, हमारे रीजन में मौजूद है, शुद्ध तर्क में। तो किताब का जो सेंट्रल सवाल है वो है, मुझे क्या करना चाहिए और क्यों?
और कांट का जवाब क्या था, अगर संक्षेप में बताना हो?
उनका कहना था कि सही काम वो है जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। हमारा जो तर्क है वही हमें बता सकता है कि कौन सा सिद्धांत, जिसे वो मैक्सिम कहते हैं, नैतिक रूप से सही है।
मैक्सिम, ये क्या होता है?
मैक्सिम मतलब हमारे काम करने का व्यक्तिगत सिद्धांत, जैसे मैं हमेशा सच बोलूंगा या मैं मुश्किल में दूसरों की मदद करूंगा, ये हमारे अपने बनाए नियम है।
अच्छा, और कांट कहते हैं कि नैतिक मूल्य नतीजे में नहीं नियत में है।
बिल्कुल, किसी काम का नैतिक मूल्य उसके परिणाम से नहीं बल्कि उसके पीछे की नियत, उस सिद्धांत यानी मैक्सिम से तय होता है। आपने वो काम क्यों किया, किस सिद्धांत के तहत किया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। नतीजा क्या निकला वो बात की बात है।
तो उन्होंने खुशी या अपने फायदे जैसी चीजों को नैतिकता का आधार मानने से इनकार कर दिया।
हाँ, क्योंकि ये चीजें तो व्यक्ति व्यक्ति पर बदलती हैं, किसी को किसी चीज से खुशी मिलती है, किसी को किसी और चीज से, और ये हमेशा तर्कसंगत भी नहीं होती, तो ये नैतिकता का पक्का आधार नहीं बन सकती।
तो ये सिर्फ भावनाओं या नतीजों को नकारने की बात नहीं है, ये असल में तर्क को, रीजन को नैतिकता की ड्राइविंग सीट पर बिठाने की कोशिश है।
एग्जैक्टली। चलिए थोड़ा और समझते हैं कि कांट ने ये किया कैसे, किताब के अंदर वो अपने तर्क को कैसे गढ़ते हैं।
हाँ, जैसे आपने बताया कि वो मैक्सिम की बात करते हैं, हमारे व्यक्तिगत सिद्धांत।
हाँ, तो पहले वो कहते हैं कि हम सब अपने कामों के लिए कुछ सिद्धांत बनाते हैं, ये हुए मैक्सिम। लेकिन नैतिक नियम जो है वो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं हो सकता, उसे सार्वभौमिक यूनिवर्सल होना चाहिए।
मतलब ऐसा जिसे हर कोई हर जगह अपना सके।
बिल्कुल, यहीं पर उनका वो मशहूर कॉन्सेप्ट आता है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, निरपेक्ष आदेश।
हाँ, ये तो काफी सुना हुआ है। ये है क्या आसान शब्दों में?
ये एक तरह का टेस्ट है, एक कसौटी। कांट कहते हैं, कोई भी काम करने से पहले खुद से ये सवाल पूछो, जिस सिद्धांत यानी मैक्सिम पर मैं ये काम करने जा रहा हूं, क्या मैं ये चाह सकता हूं कि वो एक सार्वभौमिक कानून बन जाए?
मतलब
क्या मैं ये चाह सकता हूं कि हर कोई हमेशा हर परिस्थिति में इसी सिद्धांत पर चले?
कोई उदाहरण दे सकते हैं?
जरूर। मान लीजिए आप पैसे की तंगी में हैं और सोच रहे हैं कि किसी से झूठा वादा करके उधार ले लें। आप जानते हैं कि आप पैसे वापस नहीं कर पाएंगे, तो आपका मैक्सिम क्या हुआ?
मैक्सिम हुआ कि जब मुझे जरूरत हो मैं झूठा वादा करके पैसे उधार ले लूंगा।
ठीक, अब कांट का टेस्ट लगाइए। क्या आप चाहेंगे कि ये एक सार्वभौमिक कानून बन जाए कि हर कोई जब भी जरूरत पड़े झूठा वादा करने लगे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा हुआ तो वादे का मतलब ही खत्म हो जाएगा, कोई किसी पे भरोसा ही नहीं करेगा।
एग्जैक्टली, ये विरोधाभासी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए झूठा वादा करना नैतिक रूप से गलत है कांट के अनुसार।
अच्छा, तो ये सिर्फ ये नहीं है कि अगर सब ऐसा करेंगे तो दुनिया कैसी होगी, बल्कि ये भी है कि क्या ये सिद्धांत अगर सब अपनाएं तो तार्किक रूप से संभव नहीं है? ये सोचने का एक अलग नजरिया है।
बिल्कुल, ये उसके आंतरिक तर्क को परखता है।
लेकिन फिर कांट अच्छी इच्छा या गुडविल की भी बात करते हैं, वो क्या है?
हाँ, गुडविल। कांट कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जो बिना किसी शर्त के अपने आप में अच्छी है, और वो है अच्छी इच्छा। इसका मतलब है सही काम करने की नियत, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काम सही है, नैतिक रूप से जरूरी है, किसी डर से या किसी लालच से या किसी अच्छे नतीजे की उम्मीद से नहीं।
तो बुद्धि, साहस, दौलत, ये सब अच्छी नहीं है?
वो अच्छी हैं, पर अपने आप में नहीं। उनका इस्तेमाल बुरे कामों के लिए भी तो हो सकता है ना? सोचिए, एक बुद्धिमान चोर या एक साहसी डाकू।
हाँ, बात तो सही है।
लेकिन अच्छी इच्छा, कांट कहते हैं, वो हमेशा अच्छी ही रहती है, भले ही बदकिस्मती से उसके नतीजे अच्छे ना निकले। मान लीजिए आपने पूरी नेक नियति से किसी डूबते को बचाने की कोशिश की, पर बचा नहीं पाए, आपकी इच्छा फिर भी अच्छी थी।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये थोड़ा कठोर नहीं लगता? मान लीजिए कोई किसी की मदद इसलिए करता है क्योंकि उसे उस पर दया आ जाती है या उसे दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है, तो क्या कांट के हिसाब से उस काम का कोई नैतिक मूल्य नहीं है?
ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और अक्सर कांट की आलोचना इसी बात पर होती भी है। देखिए, कांट ये नहीं कहते कि दया या सहानुभूति बुरी चीजें हैं। अरे नहीं, वो सराहनीय है, अच्छी भावना है।
लेकिन
उनके अनुसार किसी काम का जो शुद्ध नैतिक मूल्य है वो तब आता है जब वो काम कर्तव्य की भावना से किया जाए, मतलब नैतिक कानून के प्रति सम्मान की वजह से।
कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक।
हाँ, जब आप सही काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपका तर्क कहता है कि आपका कर्तव्य है, ये नैतिक रूप से सही है, भले ही आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं कुछ और कह रही हों, आपकी खुशी उसमें ना हो, इसे वो आख्तुंग या रिस्पेक्ट कहते हैं।
आख्तुंग?
हाँ, ये जर्मन शब्द है। ये डर या प्यार जैसी कोई आम भावना नहीं है, ये तर्क द्वारा, रीजन द्वारा नैतिक कानून के लिए पैदा हुई एक बौद्धिक श्रद्धा है। ये हमारे अहंकार को कम करती है और हमारी तर्कसंगत प्रकृति को महत्व देती है।
तो फिर नैतिकता का असली स्रोत हमारी तर्कसंगत क्षमता हुई, और इसी से हमारी गरिमा, हमारी डिग्निटी भी जुड़ी है।
बिल्कुल, कांट के लिए मानवीय गरिमा का स्रोत यही है कि हम सिर्फ बाहरी नियमों या अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम तर्क के जरिए खुद अपने लिए नैतिक कानून बना सकते हैं और फिर उनका पालन भी कर सकते हैं।
इसे ही वो स्वायत्तता कहते हैं, ऑटोनोमी।
हाँ, इच्छा की स्वायत्तता, ऑटोनोमी ऑफ द विल। जब हम अपनी मर्जी से अपने तर्क के आधार पर नैतिक नियम चुनते हैं और उनका पालन करते हैं, इसके विपरीत होता है हेट्रोनोमी, जब हम बाहरी दबाव या लालच या डर या किसी और की इच्छा से काम करते हैं। स्वायत्तता ही हमें नैतिक प्राणी बनाती है और हमें विशेष सम्मान का पात्र बनाती है, हर इंसान को।
ये सब तो ठीक है, लेकिन कांट ने खुद भी ये माना कि असल दुनिया में अक्सर ऐसा नहीं होता कि नेकी करने वालों को हमेशा सुख मिले। पुण्य और खुशी साथ साथ नहीं चलते कई बार, इस पहेली को वो कैसे सुलझाते हैं?
हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। इसे कांट सर्वोच्च भलाई सुम्मम बोनम का विरोधाभास या एंटीनॉमी कहते हैं। हमारा तर्क ये चाहता है कि जो नेक है वो खुश भी रहे, पुण्य और खुशी का मेल हो। लेकिन असल जिंदगी में जैसा आपने कहा, ऐसा अक्सर नहीं होता।
तो फिर
इसे सुलझाने के लिए कांट कुछ चीजों को मानना जरूरी बताते हैं। इन्हें वो शुद्ध व्यवहारिक तर्क के अभिधारणाएं या पोस्टुलेट्स ऑफ प्योर प्रैक्टिकल रीजन कहते हैं। ध्यान रहे, ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें वैज्ञानिक रूप से साबित किया जा सके, पर नैतिक जीवन को संभव और अर्थपूर्ण बनाने के लिए इन्हें मानना जरूरी है।
और ये अभिधारणाएं क्या हैं, पोस्टुलेट्स?
तीन हैं मुख्य रूप से। पहली और सबसे महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता, फ्रीडम। अगर हम नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं, अगर हमसे कहा जाता है कि तुम्हें यह करना चाहिए, तो इसका मतलब ही है कि हम स्वतंत्र हैं वो करने या ना करने के लिए। ऑट इम्प्लाइज कैन। कांट तो यहां तक कहते हैं कि नैतिक कानून की हमारी जो चेतना है वही हमारी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा सबूत है।
अच्छा, और दूसरी?
दूसरी है आत्मा की अमरता, इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल। कांट का मानना था कि नैतिक पूर्णता यानी पूरी तरह से पुण्यवान बनना इस जीवन में शायद संभव न हो, ये एक अनंत लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनंत समय यानी आत्मा की अमरता की जरूरत होगी। ये एक तरह की उम्मीद है।
और तीसरी?
तीसरी है ईश्वर का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अंततः पुण्य और खुशी के बीच तालमेल कौन बिठाएगा? ये गारंटी कौन देगा कि नेक इंसान को अंत में सुख मिलेगा भले इस जीवन में न मिले? इसके लिए कांट एक सर्वोच्च न्यायप्रिय शक्ति यानी ईश्वर के अस्तित्व को मानना जरूरी समझते हैं।
लेकिन ये सब आस्था की बातें हुई है ना?
हाँ, लेकिन ये अंधी आस्था नहीं, ये तर्कसंगत आस्था है। कांट के लिए ये वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, बल्कि नैतिक जीवन को कोहेरेंट, सुसंगत और अर्थपूर्ण बनाने वाली जरूरी मान्यताएं हैं। तर्क हमें इन तक पहुंचाता है नैतिकता की मांग के तौर पर।
तो संक्षेप में कहें तो कांट ने नैतिकता को तर्क पर खड़ा किया, उसे यूनिवर्सल बनाने की कोशिश की और दिखाया कि कैसे नैतिक होने के लिए हमें स्वतंत्रता, अमरता और ईश्वर जैसी चीजों में एक तरह का तर्कसंगत विश्वास रखना पड़ता है।
चलिए अब कुछ मुख्य विषयों को समेटते हैं जो इस पूरी बातचीत से उभर कर आए हैं।
हाँ बिल्कुल, सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश तो यही है, नैतिक कानून की सर्वोच्चता और सार्वभौमिकता। नैतिकता किसी की मर्जी, किसी की भावना या किसी संस्कृति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तर्क पर आधारित एक ऐसे नियम पर टिकी है जो सब पर सब जगह लागू होता है, वो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। दूसरा, इच्छा की स्वायत्तता और मानवीय गरिमा। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। हमारी असली कीमत, हमारी डिग्निटी इस बात में है कि हम अपने तर्क का इस्तेमाल करके खुद के लिए सही गलत का फैसला कर सकते हैं और उसके अनुसार चल सकते हैं। हम सिर्फ नियमों का पालन करने वाले भेड़ बकरी नहीं हैं, बल्कि हम उन नियमों को बनाने वाले भी हैं।
हाँ, और यही चीज हर इंसान को सम्मान का पात्र बनाती है, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। किसी भी समाज के लिए, भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज के लिए भी, ये विचार बहुत मायने रखता है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक अंत है, एक लक्ष्य है।
तीसरा, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ड्यूटी फॉर ड्यूटीज सेक। नैतिक काम वो है जो इसलिए किया जाए क्योंकि वो सही है, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, न के किसी और बाहरी लालच या भावना के दबाव में। ये हमें अपनी पसंद नापसंद से ऊपर उठकर जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है।
बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ भी कर्मण्याधिकार अस्ते मा फलेषु कलाचन की बात है। हालांकि कांट का जोर फल से ज्यादा कर्म के पीछे के सिद्धांत, उस मैक्सिम की शुद्धता पर ज्यादा है, पर वो कर्तव्य वाली भावना यहाँ भी है।
चौथा, परिणामों से ज्यादा नियत का महत्व। किसी काम का नैतिक मूल्यांकन करते समय हमें उसके नतीजों से ज्यादा उसके पीछे की नियत, उस सिद्धांत को देखना चाहिए। क्या वो सिद्धांत ऐसा है जिसे हम चाहें कि सब अपनाएं? ये असली सवाल है।
और पांचवा कह सकते हैं कि एक तर्कसंगत आस्था का आधार। कांट फर्म को नैतिकता का आधार नहीं बनाते, बल्कि वो दिखाते हैं कि कैसे नैतिकता हमें कुछ आध्यात्मिक विश्वासों की ओर ले जाती है, स्वतंत्रता, अमरता, ईश्वर, जिन्हें मानना हमारे नैतिक जीवन के लिए तर्कसंगत लगता है।
कांट का लेखन घना है, पर उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ यादगार विचारों या कथनों पर बात करें?
हाँ क्यों नहीं, एक तो बहुत ही प्रसिद्ध है जो उनकी इस किताब के निष्कर्ष में आता है, दो चीजें मन को हमेशा नए और बढ़ते आश्चर्य और विस्मय से भर देती हैं, मेरे ऊपर तारों भरा आकाश और मेरे भीतर नैतिक कानून।
आह, ये तो बहुत खूबसूरत है। मतलब बाहरी दुनिया का नियम और अंदर का नियम।
हाँ, जैसे ब्रह्मांड में एक व्यवस्था है, वैसे ही हमारे अंदर, हमारी अंतरात्मा में भी नैतिकता का एक नियम है। और दोनों ही विस्मयकारी हैं, दोनों ही तर्क पर आधारित हैं।
एक और शक्तिशाली विचार है जो अक्सर उनके कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के दूसरे सूत्रीकरण से जोड़ा जाता है। मानवता के साथ, चाहे वो तुम्हारे अपने व्यक्ति में हो या किसी अन्य के व्यक्ति में, हमेशा एक साध्य एंड के रूप में व्यवहार करो, कभी भी केवल एक साधन के रूप में नहीं।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हर इंसान का सम्मान करो, उसकी अपनी एक आंतरिक कीमत है, उसकी गरिमा है, उसे सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल मत करो।
आज के मानवाधिकारों की जो सोच है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं यहाँ दिखती हैं।
बिल्कुल। और तीसरा, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, चाहिए का अर्थ है कर सकते हैं, ऑट इम्प्लाइज कैन। ये बहुत छोटा सा वाक्य है पर गहरा है। अगर नैतिक रूप से हमसे कुछ करने की अपेक्षा की जाती है, अगर कहा जाता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो इसका मतलब ही है कि हम में वो करने की क्षमता है, हम स्वतंत्र हैं।
ये जिम्मेदारी और क्षमता को एक साथ जोड़ देता है। ये विचार तो बहुत गहरे हैं, लेकिन सवाल फिर वही आता है कि आम जिंदगी में इनका क्या इस्तेमाल है। ये हमें हमारी रोजमर्रा की जो नैतिक दुविधाएं हैं, उनमें कैसे मदद कर सकते हैं?
हाँ, ये जरूरी सवाल है। देखिए, ये अमूर्त लग सकते हैं पर है नहीं। जैसे पेशेवर जिंदगी में सोचिए, आप कोई बिजनेस चला रहे हैं या कहीं नौकरी करते हैं, क्या आपकी कंपनी की कोई पॉलिसी या प्रैक्टिस ऐसी है जिसमें कर्मचारियों या ग्राहकों को सिर्फ मुनाफे का जरिया, एक साधन माना जा रहा है?
अच्छा,
कांट का सिद्धांत हमें रुककर सोचने को कहेगा, क्या आप चाहेंगे कि ये तरीका, ये मैक्सिम हर जगह अपनाया जाए? क्या आप लोगों को साध्य मान रहे हैं या साधन? यह हमें ईमानदारी, पारदर्शिता और शोषण के खिलाफ सोचने पर मजबूर करता है। झूठे विज्ञापन, कर्मचारियों का शोषण, इन सब पर सवाल उठाने का आधार देता है।
और व्यक्तिगत फैसलों में
वहां भी ये बहुत मददगार है। जब हम किसी दुविधा में हों, खासकर जब हमारी भावनाएं हमें किसी गलत काम की ओर खींच रही हों, तो हम एक कदम पीछे हटकर पूछ सकते हैं, मैं जो करने जा रहा हूं उसके पीछे का सिद्धांत क्या है, और क्या मैं सच में चाहूंगा कि ये सिद्धांत दुनिया का नियम बन जाए?
जैसे मान लीजिए ट्रैफिक नियम तोड़ने का मन कर रहा है, या टैक्स बचाने के लिए थोड़ी हेराफेरी करने का।
हाँ, क्या हम चाहेंगे कि सब ऐसा करें? ये हमें अपने लिए बहाने बनाने, अपने लिए अपवाद बनाने से रोकता है। हमें ज्यादा नैतिक रूप से सुसंगत, कंसिस्टेंट बनाता है। वादा तोड़ने का प्रलोभन हो या किसी की पीठ पीछे बुलाई करने का, हर जगह ये टेस्ट काम आ सकता है।
सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी इसका महत्व है।
बहुत ज्यादा। मानवीय गरिमा पर जो जोर है, वो लोकतंत्र, न्याय और मानवाधिकारों का आधार बनता है। नीतियां और कानून बनाते समय ये देखना जरूरी है कि क्या वे हर नागरिक के बराबर सम्मान और उसकी तर्कसंगत स्वायत्तता का सम्मान करते हैं, या वे लोगों को किसी समूह के सदस्य के तौर पर कमतर आंकते हैं या सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ ये एक मजबूत नैतिक तर्क देता है।
और अंत में नैतिक चरित्र के विकास, मॉरल कैरेक्टर में भी।
हाँ, कांट का लक्ष्य हमें सिर्फ कभी कभार अच्छे काम करने वाला नहीं, बल्कि एक अच्छी इच्छा वाला इंसान बनाना है। ऐसी इच्छा जो लगातार कर्तव्य की भावना से काम करे। खुशी अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि नैतिक जीवन जीने का एक संभावित नतीजा हो सकती है। असली संतुष्टि शायद अपनी नैतिक अखंडता को बनाए रखने से आती है, खुश होने की योग्यता हासिल करने से।
तो इस पूरी बातचीत से अगर मुझे एक चीज चुननी हो, तो वो शायद ये होगी कि नैतिकता कोई बाहर से थोपी गई चीज नहीं, बल्कि हमारे अपने तर्क की, हमारी अपनी समझ की गहराई से निकली आवाज है। ये हमें एक तरह की आज़ादी भी देता है और जिम्मेदारी भी। ये सशक्तिकरण का दृष्टिकोण है।
मेरे लिए सबसे स्थायी अंतर्दृष्टि ये है कि मानवीय गरिमा हमारी स्वायत्तता से आती है, यानी खुद के लिए नैतिक कानून बनाने और उनका पालन करने की हमारी क्षमता से। ये हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है, चाहे उनकी स्थिति, उनकी पहचान कुछ भी हो। और ये विचार कि नैतिकता तर्कसंगत और सार्वभौमिक हो सकती है, ये आज की इस बटी हुई, विभाजित दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक और जरूरी लगता है।
मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात ये रही कि कैसे कांट ने स्वतंत्रता जैसी इतनी मुश्किल से साबित होने वाली चीज को हमारे नैतिक कर्तव्य की भावना से जोड़ा। ये मानना कि क्योंकि हमें सही करने का एहसास होता है, इसलिए हम सही करने के लिए स्वतंत्र भी हैं, ये वाकई एक अनूठा और सोचने पर मजबूर करने वाला तर्क है।
हाँ, ये कांट के दर्शन का केंद्र है, द फैक्ट ऑफ रीजन।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।